ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூஆர் அபவுட் டு லிசன் சாந்தோக்யோபனிஷத் பிரசன்ட் பை சுவாமி ஸ்ரீ திவ்யானந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
தானுவாச்சே வை ஹலு யூயம் பிருத்திவம் இமம் ஆத்மானம் வைஸ்மரம் வித்வான்ஸ்வப்னம் அத்த யத்வேதமேவம் பிராதிசமாத்திரம் அபிவிமானம் ஆத்மானம் வைஸ்வானரம் உபாஸ்தே சர்வேஷு லோகேஷு சர்வேஷு பூதேஷு சர்வேஷு ஆத்மஸ்வன்னமத்தி. தான் ஹோவாச்ச சவுகோ சே சிஷ்யே ஆச்சாரியே ராஜா க்ஷத்ரிய சே பிராமணே சவுகு கதா ஏதே வை கலு யூயம் ஏ ஆப ஏதே யூயம் கலு பிரசித அனுத்தக சப்தே கலு யுவன் தும்லோக பிருத்தக் இவ இமம் ஆத்மானம் வைஸ்வானரம் வித்வான்சோ. இஸ் ஆத்மா கோ ஆப சமத் ஜானதே. வைஸ்வானர ஆத்மா தோ ஏகே கிந்து பிருத்தக் இவ பின்ன ஜெய்சே ஆப் லோக ஜானதே வித்வான்ச ஜானே வாலே பின்ன ஹே நீ கிந்து ஆப பின்னம் இவ பின்ன ஜெய்சே ஆப் ஜானதே ஹோ கேசே பின்ன இவ ஜானதே ஹோ ஜெய்சே அந்தோ கோ லேகர் தேகா தியா ஹாத்தி அந்தோ ஜன்ம சே அந்த ஹே ஜப் பகல சக்ஷு ஹே பாத் அந்த ஹோ பத்தா தேகா ஜன்ம சே ஜோ அந்த ஹே ஹாத்தி ஹாத்தி ஆயா ஹாத்தி கேசே பஞ்ச சாத் வக்தி கோர் தேகா தே ஹாத்தி ஆயா தேக்கோ படே ஹாத்தி தோ ஹாத்தி ஆய தோ கே கரேங்க அந்த ஆங்கே தோ நீ பாங்கே ஹாஸ்டே தேங்க ஓ ஜி பிரகார ஜா ஹாத் லா தாந்த கோ பக்கா தோ கே ஹாத்தி தோ சாபல் ஜெசே கோ புஷ் பக்கா சர்ப ஜெசே கான கோ பக்கா சூர்ப ஜெசே கேகா கை பிடி கோ தேகா தோ கே பட பாட ஜெசே ஐசே அலக அலக ஜிஸ் பிரகார கேத்தே இசி பிரகார ஆப் லோக பிருத்தக் ஐசே மானத்தே ஹோ ஐசே டீக் நீ ஜானத்தே பிருத்தக் இவ இஸ் ஆத்மா வைத்வான்ச அவர் பின்ன பின்ன திருஷ்டி கரெக அலக அலக ஜோ ஏக தேசமே சம்பூர்ண வைஸ்வான திருஷ்டி கரெக உபாசனா கருத்து ஹோ இல்ல அன்னம் அத்த ஆப் அன்ன காத்தே ஹோ தீப்தாக்னி ஹே இசி கா ஃபல ஹே விபின்ன பிரகார போக பிராப்த கருத்து ஹோ ஔர் அன்ய ஃபல கா சௌ கே அலக அலக ஃபல கா சௌ லோக பிரிய புத்திராதி தேக்கே ஹோ ஏ ஃபல பிராப்த கருத்தோ யஸ்து ஏதம் ஏவம் பிராதேச மாத்திரம் அபிவிமானம் ஆத்மானம் வைஸ்வானரம் உபாஸ்தே ஏ பிராதேச மாத்திர ஏ பிரதேச தியு ஆதி மூர்தா ஆதி தியு ஸ்வர்கலோ உஸ்கா மூர்தா பத்தாயா சூரிய ஹே சக்ஷு பிருத்திவி ஹே பாத ஆகாஷ ஹோ கியா தட வாயு உஸ்கா பிராண ஏ சௌ கே ஏக ஏக அவயவ ஜோ உஸ்கோ லேகர் கே பிருத்திவி தியூலோக சே லேகர் பிருத்திவி பாத அந்த ஏ தேஹ மே ஸ்தித ஹே ஔர் முகாதி இந்திரிய கே த்வாரா உஸ்தித ஹே பிருத்திவி தியூலோக சே பிருத்திவி தக பிரதேச சே ஜ்ஞான ஹோதா ஹே சாஸ்திர சே ஜ்ஞான ஹோதா ஹே ஔர் கஹீ கஹீ சே கஹா கியா மூர்தா சே லேகர் ஜீவ தக இத்தன பிரதேச மாத்ர ஹுவா இஸ் லேகர் யா தக ஏசே பி கஹீ ஆயா தோ ஏ பிரத்யேக ஆத்மா அபிவிமானம் ये प्रादेश मात्र प्रदेश परिमाण में इसे ज्ञान होता है. अभिमान का था अभिमुख होकर के अहम इसे ज्ञान होता है. यहां अहंग्रह उपासना है. ये जो वैश्वानर अहमअस्मी सर्वव्यापक ब्रह्मांड स्थूल प्रपंच अभिमानी है वैश्वानर अहम ऐसे ज्ञान होता है. अभिमानम वैश्वानरम उपासते जो इसे उपासना करता है स सर्वेषु लोकेषु सर्वेषु भूतेषु सर्वसु आत्मसु अन्नमति. ये एक एक उपासना करके आपको फल तो मिलता है कि जो संपूर्ण वैश्वानर की जो उपासना करता है वह अन्नादि दीप्ताग्नि तो होता है. सर्वेषु लोकेषु पृथ्वी स्व भूर भुव स्व आदि सारे लोक में सारे चौदह भुवन में सर्वेषु भूतेषु जितने भूत है जीव चर आचर सारे सर्व सर्वेषु आत्मसु सब आत्मा में क्या आत्मा तो एक कहते सब आत्मा क्या तो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि में लोक में आत्मत्व बुद्धि कल्पना करके मानते हैं. कोई देह का आत्मा मानता है कोई इंद्रिय को कोई मन को कोई बुद्धि को चार बार का मत है. देह का आत्मा मानते हैं देह ही आत्मा है और देह आत्मा क्या देह से बिना कोई आत्मा है ही नहीं. प्रत्यक्ष देह दिखता है इंद्रिय आदि का प्रत्यक्ष नहीं होता है. जो चक्षु आदि हम देखते हैं गोलक स्थान इंद्रिय का प्रत्यक्ष नहीं होता है देह ही आत्मा. कोई कहते देह नहीं इंद्रिय आत्मा कोई कहते मन आत्मा कोई कहते प्राण आत्मा ये भेद हुआ. और बौद्ध मत कहती है बुद्धि क्षणिक विज्ञान बुद्धि आत्मा क्षणिक विज्ञान बुद्धि प्रति समय उत्पत्ति नाश होने वाली ही है, उससे अलग कोई आत्मा नहीं। प्रतिक्षण बुद्धि उत्पत्ति नाश होने वाले, और बाहर जो पदार्थ सब दिखता है, बाह्य पदार्थ बुद्धि से बिना कुछ है ही नहीं, ये विज्ञानवादी कहते हैं। योगाचार मत में विज्ञान बुद्धि वो क्षणिक है। वेदांत में भी ऐसा कहते हैं, ज्ञान रूप ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म का विवर्त है सारा प्रपंच, सारा प्रपंच ब्रह्म का विवर्त है, ब्रह्म में अध्यस्त आरोपित है। वहां विज्ञानवादी योगाचार्य बौद्ध मत में कहते ज्ञान बुद्धि है, उसका विवर्त कहते हैं। बाह्य पदार्थ कुछ है नहीं बुद्धि से भिन्न, किन्तु बुद्धि को कहते क्षणिक, प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश होने वाला। प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश होने वाला हो, पूर्व क्षण में क्या था, वर्तमान क्षण में क्या है, जानने वाला कोई एक नहीं है। बुद्धि से भिन्न कोई स्थायी पदार्थ यदि नहीं है तो क्षणिक एक क्षण रहने वाला, इसको कहने वाला कौन है? जो एक क्षण रहता है उसी समय नष्ट हो जाता है, द्वितीय क्षण को नहीं रहा। पूर्व क्षण में क्या था उसको पता नहीं, अब पूर्व क्षण बुद्धि नष्ट हो गई, द्वितीय क्षण अलग बुद्धि हुई, इसको कौन जानने वाला? और प्रत्येक यहां तदेव इदम, इसको मैं काल देखा था, आज देखे थे, तस्वयम पुस्तक देखा था, तस्वयम वही घट यहां आए। ये प्रतिभिज्ञा होती है। प्रतिभिज्ञा होने के लिए पहले जिस व्यक्ति को देखा, अभी देख रहे, तो उसको कहेंगे वही है। यदि पहले नहीं देखा है, एक ही व्यक्ति को देखा, वो नहीं कहेगा तदेव इदम, जिसको मैं पहले देखा था वही यह है, जिसको अन्यत्र देखा था अब यहां देख रहा हूं, इसको कहते प्रत्यभिज्ञा। वो प्रत्यभिज्ञा के लिए पूर्व देखा गया संस्कार है और प्रत्यक्ष अभी देख रहे, एक स्मरण होता है। स्मरण के लिए संस्कार कारण, पहले देखा था तो संस्कार से स्मरण होगा, वर्तमान सामने नहीं हो तो स्मरण होगा है? हाँ, वर्तमान नहीं होने पर स्मरण होता है, किसको रास्ता में देखा था और किसको पहले देखा था, वर्तमान सामने नहीं तो स्मरण होगा। अरे पहले किसको नहीं देखा था, सामने देखते ही प्रत्यक्ष होगा, होता है, इसके लिए संस्कार की आवश्यकता नहीं। किंतु प्रत्यभिज्ञा के लिए चक्षु के सामने हो, प्रत्यक्ष देख रहा है, इंद्रिय सन्निकर्ष हो और संस्कार हो, तभी प्रत्यभिज्ञा होती। संस्कार नहीं तो वही यह है, इसे प्रत्यभिज्ञा नहीं होगी। स्मरण करेगा संस्कार से, किंतु वह यह ऐसा नहीं होगा। वह यह कहने के लिए सामने भी होना चाहिए, दोनों होने से, अर्थात जिसने पहले देखा अभी देख रहा है कहता वही तदेव इदम। यदि एक क्षण ही उत्पत्ति नाश वाला बुद्धि है, पहले देखा था जिसको देखा था वही यह, ये किस ज्ञान होगा? ये प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा प्रमाण से क्षणिक विज्ञानवाद का निराश हो जाता है। किंतु वो कहते प्रत्यभिज्ञा तो कभी कभी ऐसा होती है, भ्रांति होती प्रत्यभिज्ञा, उससे भिन्न को देकर के वही यह इसे कह देते हैं। कोई औषध पहले सेवन किया था पिछले साल, इस साल औषध लाया डॉक्टर ने दिया, हाँ क्या यही औषध में पिछले साल लिया था? तदेव इदम औषधम, जिस औषध पिछले साल पिया था वही औषध यह है। बताओ वही औषध है, नाम वही है, कंपनी वही है, सब वही है, किन्तु वही औषध जिसको पी लिया था तो गया, ये औषध कैसे? पिछले साल आम खाया था हापुस आम, इस साल आ गया आएगा वही आम तो मैं खाया था, बहुत ही मिठाई, ये आम खाया था पिछले साल, वो आम कहा गया? काल के आम भी नहीं, आज को पिछले साल का कहा? उसके समान जातियों को देख करके तदेव इदम ऐसा हो जाती है। सेयम गुर्जरी, किस गुर्जर देश किसको देखा था वो गुर्जरी, वो उसके वेशभूषा देकर के वो जो देखा था वही है, वो व्यक्ति नहीं। समान देश को देकर के ऐसा होता है, किसी व्यक्ति के किसी देश के लोगों को वेशभूषा देखा, आगे देखा था अरे वही है, वही तो नहीं, उसे भिन्न है। तो समान जातीय में भी प्रतिभिज्ञा होती है। तो ये दीप जलाते हैं, दीप सिक्का जलते फिर पाठ करते हैं, एक देखा जाओ देखो दीप देख रहा हो, देखा दीप जैसे लगाते समझ जैसे दीप सिक्का, सेम दीप कलिका, दीप सिक्का तो वही है जैसे पहले, वही दीप कलिका है। पास में बैठ कर देखो दीप प्रतिक्षण नीचे से ऊपर जाती है, समान होने पर सजातीय में प्रतिभिज्ञा हो जाती है। तो एक नहीं होने पर भी एक जो ज्ञान हुआ भ्रांति है, तो वो लोग क्या कहेंगे? स्वयं घट स्वयं देवदत्त, ये जो प्रतिभिज्ञा है ये भ्रांति है। भ्रांति होने के लिए प्रत्यभिज्ञा पहले स्वयं घट कहेगा कैसे, और भ्रांति का निश्चय कौन करेगा? भ्रांति निश्चय सजातीय में प्रत्यभिज्ञा होती है जो कहते हो, समान जातीय में प्रत्यभिज्ञा होती है। दृष्टान्त बताते हो, पहले आम खाया था, अभी आम खाया, सोए तदेव इदम। ये प्रत्यभिज्ञा भ्रांति सिद्ध करने के लिए भी पूर्व पर का ज्ञान होना चाहिए। अब प्रतिक्षण जो उत्पत्ति नाश होने वाला वर्तमान है तो पूर्व का ज्ञान नहीं, पूर्व में जो था उस समय चला गया अभी नहीं, ऐसे भ्रांति प्रतिभिज्ञा भी कैसे प्रतिपादन करोगे? उनका खंडन होता है। तो उनको भी कोई आत्मा मानते हैं बुद्धि को, तो इस प्रकार अलग अलग आत्मा मानते हैं। यहां जो कहा है ये सर्वस्व आत्मस्व अन्नमति, सर्व आत्म शब्द से शरीर इंद्रिय मन बुद्धि को आत्म शब्द से कहते हैं। तैतृय उपनिषद माया ऐसु अन्य अंतरात्मा प्राणमय, अन्य अंतरात्मा मनमय, स्व आत्म शब्द प्रयोग किया, अन्नमय प्राणमय मनमय पांच कोश में आत्म शब्द प्रयोग किया। यहां सर्वेश्वर आत्मसु कहा था, सारा बुद्धि में आत्म तो कल्पना करते, सारे प्राणी में, सबके प्राणी में शरीर इंद्रिय में रह करके वैश्वानर सर्व प्राणी आत्मक हो जाता है। सर्व प्राणी आत्मक होकर के सारे शरीर के साथ एक होकर के सर्वात्मा होता है, सर्वात्मा होकर के सारे अन्न का भोजन करता है। जो अज्ञानी क्या करता है? अज्ञानी भी भोजन करता है किंतु अपने सर्वपिंड मात्र में अभिमान करके खाता है। अब वैश्वान उपासक भी खाता है किंतु वो क्या मानकर खाता है? अपने को पिंड मात्रा परिचन्न नहीं, सर्वात्मा का मैं हूं। उपासना करते करते इतने दृढ़ हो जाता है, देह में अहम बुद्धि नष्ट होकर के सर्वात्मा का मैं हूं, सारा जितने शरीर में ही हूं, सारे शरीर में मैं अन्न खाता हूं। जैसे संवर्ग उपासना करने वाला भिक्षा करते जाता है तो कहता है, संवर्ग जिस प्रजापति हिरण्यगर्भ रूप में हूं, जिसके लिए भोजन बना तो उसको तुम भोजन नहीं देते हो, अपने को समष्टि रूप मानता है। इसी प्रकार यहां फल बताया, सर्वात्मक वैश्वानर स्वरूप होकर के सारे सर्वात्मा होकर सर्वत्र अन्न खाता है, परिचन अभिमानी नहीं होता है। तस्य हवाय तस्य आत्मनो वैश्वानरस्य मूर्धे वसुतेजास चक्षुर्विश्वरूप प्राण पृथक वर्तमात्मा संदेहो बहुलो वस्तिरेव रही पृथिव्यव पादाउर एव वेदीलो मानी बर्हृदयंगार पत्यो मनो अन्वहार्य पचन आश्यम आहवनीय। अभी संपूर्ण वैश्वानर का उपदेश है। जिस पर्याय में प्राण को कहा था प्रथम में बाल्लव्य व्याघ्र पद में पृथक वर्तमात्मा कहा था, पृथक वर्तमात्मा क्या है? वायु का भिन्न भिन्न नाम है, उस समय नहीं कहा था। वो नाम क्या है? आवह उद्वादी है, वह वह प्रापण है, वह तीति वह वहन करने वाला वह, उसका नाम अलग अलग होता है। उपसर्ग जोड़ दो, आ जोड़ दो तो क्या होगा? आवह। उद उजाड़ दें तो क्या होगा? भाष्य में थोड़ा दे दिया, आवह उद्वद आदि भेद। तो वायु का जो नाम है अलग, पृथक वर्तन पृथक नाम है, वही वह में आ जोड़ा तो आवह, उद जोड़ने से क्या हुआ? उद्वह। प्र जोड़ेंगे तो दो कहां से आया? प्रवह। उद में उद्वह, प्र जोड़ेंगे तो प्रवह, वी जोड़ेंगे तो विवह, परा परा जोड़ो परावह, सम जोड़ेंगे तो संवह, परि जोड़ेंगे तो परिवह। आवह उद्वह प्रवह विवह परावह संवह परिवह अलग प्रकार है। तो कहीं कहीं उनचास कहते, न न करके भेद करके कहते। तो ये अलग भेद से वर्तमान है, वायु अलग अलग है, नाम अलग अलग होता है। जैसे प्राण अन्न, प्राण अन्न, उसी अन्न का ही नाम हो गया प्राण, पान उदान व्यान समान, प्र आंग अन्न जोड़ दो प्राण हो गया, वी आंग जोड़ते व्यान हो गया, उद आंग जोड़ते उदान हो गया, अप आंग जोड़ते अपान हो गया, वी आंग जोड़ते व्यान हो गया, सम आ जो समान, एक ही अन्न में अलग अलग नाम होता है। वस्तुतः धातु का अनेक अर्थ होता है, उपसर्ग का जोड़ने से अलग अर्थ, अलग अर्थ का द्योतक सूचक होता है उपसर्ग, अर्थ होता है धातु का। हिरण्य हरण धातु विहार प्रहार आहार संहार परिहार कितने हो जाता है, विहार प्रहार संहार आहार उपहार बहुत अर्थ होता है। हिरण्य हरण धातु का ही सब अर्थ है। उपसर्ग धातु तो बलाद अन्यत्र नियते विहार आहार प्रहार संहार परिहार वत का ही सिद्ध है। ये बताते हैं जो व्याकरण है पाणिनि आचार्य ने व्याकरण रचना क्या था तो उनको व्याघ्र कहा लिया था बताते हैं। वो व्याघ्र शब्द क्या वी आंग प्रयोग घ्रा धातु से बनता है व्याघ्र। जो व्याघ्र सामने देखा उन्होंने क्या व्याघ्र क्या करेगा विशेषण आ समता जिग्रति वह आकर के पूरा शरीर को सूंघ लेगा क्योंकि आ जिग्रति व्याघ्र सूंघता है चलो सूंघ लेगा ले तो क्या बैठी है आखिर व्याघ्र सूंघ कर चले जाएगा। किंतु वो तो व्याघ्र सूंघ के आगे पकड़ लिया फिर पानी ने उस समय बता दिया अरे तो सूंघना था खाने के धातु नाम अनेक अर्थत्वात उन्होंने कहा धातु नाम अनेक अर्थत्वा धातु अनेक अर्थ होते हैं कहते धातु अनेक अर्थ के उस समय पानी ने कह दिया था धातु नाम अनेक अर्थत्वा सो क्यों खाया धातु नाम अनेक अर्थत्वात केवल सूंघने वाला नहीं खाने वाला भी हो जाएगा। तो धातु में बहुत ऐसे अर्थ होता है ये सब उपसर्ग जलने से अलग अलग अर्थ हो जाता है। अब ये सब को मिला करके वैशानर का उपासना उपदेश करते हैं। तस्यवा एतस्य आत्मनो वैशानर से वैशानर आत्मा का मूर्धेव सुतेजस ये सुतेजस है सौवन तेज वाला तेज रूप द्युलोक है मूर्धा है मस्तक है और चक्षुर विश्वरूप आदित्य सूर्य को विश्वरूप कहा था वो सूर्य वैश्वानर के चक्षु है। प्राण हो गया पृथकवर्तनात्मा पृथकवर्तात्मा नाना दिशा में चलने वाले जो प्राण है वायु हो उसका प्राण है वायु सब जानते हैं वायु वैश्वानर का प्राण है। इसमें एक वैश्वानर का और एक नाम कहा था वो जो सुतेजा कहा था वो वैश्वानर के मूर्धा है। जो विश्वरूप सूर्य की उपासना करने वाले कहते सूर्य उसके चक्षु है जो पृथ्वीवर्तमान वायु को मानने वाले कहते वायु तो उसका प्राण है और जो आत्मा संदेह कहे संदेह है बहुल देह उसका है और बस्ती है रई जो मानते बस्ती मूत्र स्थान है और पृथ्वी एवं पादो पृथ्वी में उपासना करते पृथ्वी वैश्वानर का पाद है। आगे जो वैश्वानर उपासना करता है उसके भोजन करता है भोजन में अग्निहोत्र संपादन करते हैं। अग्निहोत्र संपादन करने के लिए वैश्वानर उपासक जो भोजन करेगा उसमें अग्निहोत्र होता है। कोई तो अग्निहोत्री अग्नि आधान करके सायं प्रातः आहुति देता है तो अग्निहोत्र करता है इष्ट कर्मे माता अग्निहोत्रम तप सत्यम किन्तु ये वैश्वानर उपासक जो भोजन करता है उसमें अग्निहोत्र हो जाता है। अग्निहोत्र कैसे होगा अग्निहोत्र करने के लिए कहते वैश्वानर का तस्य उर एव वेदी उर छाती उसका वेदी के समान हुआ जैसे वेदी में स्थंडल बना करके कुछ कर्म करते हैं छाती उसका वेदी के समान हो गया और लोमानी बरही छाती में लोम है वेदी में बरही कुसर डालते तो लोम हो गया कुश के समान और हृदय हो गया गारहपत्य अग्नि वो अग्नि है हृदय है गारहपत्य अग्नि गारहपत्य अग्नि से लेकर के आहवन अग्नि में हवन किया जाता है। यहां हृदय से लेकर के मन आता है हृदय से बुद्धि से हृदय से आता है इसलिए हृदय हो गया गारहपत्य अग्नि और मनो अनुहार्य पचन मन हो गया अनुहार्य पचन दक्षिण अग्नि आस्य हो गया आहवन्य आहवन्य अग्नि में हवन करते उसके मुख में अन्न जाता है तो आहवन्य अग्नि में हवन हुआ अर्थात तो वैश्वान रूपासक जो मुख में अन्न खाता है आहवन्य अग्नि में हवन होता है और वेदी में जाकर के कर्म होता है तो एक अग्निहोत्र कर्म हो गया। जो उपासना करने वाले इसे भोजन करता है तो अग्निहोत्र हो जाता है अग्निहोत्र कर्म तद यद भक्तम प्रथमम आगछे तद धोमियम सयाम प्रथमाम आहुतिम जुहुयात ताम जुहुयात प्राणाय स्वाहेति प्राणस्तृप्यति। जो यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं अष्टवर्षम ब्राह्मणम उपनयित तम वेद अध्यापयित ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य का उपनयन संस्कार कराते हैं यज्ञोपवीत संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार करते समय जो भोजन करता है प्राण का पंचाहुति देते हैं भोजन कर पहले प्राण पंचाहुति प्राण का आहुति दे करके फिर आचमन करता है बाद में भोजन करता है पहले आचमन करता है और अर्पण करता है ऐसे प्राणायाम अपानायाम करके पांच आहुति देकर के उसके बाद भोजन करता है, ये अग्निहोत्र उपासना होता है। तद यद भक्तम प्रथम मार्ग से, जो पहले भक्तम प्रथम मार्ग भोजन काल में पहले भक्तम भात आता है, पहले भात आता है प्राणाहुति देने के लिए, और भोजन में प्रधान हो गया भात। कुछ लोग तो रोटी सब खाने के बाद हलवा पहले देंगे, रोटी खाएंगे बाद में भात आता है। ये शास्त्र में आया भक्तम प्रथम आगछेद, रोटी का नाम नहीं है। भात पहले, भक्तम प्रथम आगछेद भोजन पहले आता है, प्रथम भात आना चाहिए, उसे भक्त से भात से ही आहुति देते हैं। इसलिए जगन्नाथपुरी में तो भात है, वहां बद्रीनाथ में भी भात खिचड़ी बनाते हैं, और कहीं कहीं इधर में देखा था गुजरात में रोटी भी चलता है, भोजन भोजन में रोटी पूरी बनाते वहां द्वारिकानाथ में क्या अन्न भोजन होता है, अन्य तो मीठा तो करते राज भोग, और अन्न भोजन मालूम है किसको नहीं, अन्य कहीं कहीं वहां देखेगा रोटी भी भात सब्जी आदि होता है, तो अन्न पहले होता है। ये एकादश के दिन भी जगन्नाथपुरी में भात का भोग होता है, बद्रीनाथ में भी, उनके भगवान के प्रति ऐसा नहीं है कुछ, तो अन्न का होता है। तो प्रथम ये होम, यह होम के योग्य हुआ, प्रथम जो भोजन आया उसको हवन करना चाहिए। स्वयं प्रथमाम आहुति जो हुआ तो प्रथम जो आहुति हवन करे, यहाँ आहुति शब्द होने से जो पंचाहुति पांच आहुति देते हैं, थोड़े से जैसे आहुति करने के लिए चारु पुरोडास बनाते थोड़े से लेते, इसी थोड़े से लेना है, बहुत नहीं तो थोड़े से लेकर हवन करे। आहुति शब्द दिया, मुमुक्षु डाले उसमें प्राणाय स्वाहा कह करके थोड़ी दिया, फिर आगे आगे कहेंगे द्वितीय द्वितीय तृतीय आदि सब कहेंगे, पांच आहुति देता है। छोटे बच्चे को जो जन्म संस्कार कराते हैं सुबह से कुछ खाना नहीं, तो बहुत देर में उसके कर्म होता है, जन्म संस्कार हो, जन्म संस्कार होने भूख तो लगती है, सोता है थोड़ा अधिक मिल जाए तो खा लेंगे। कहते नहीं थोड़ा सा, कोई कहीं बात है थोड़ा अधिक भी खिला देते, किंतु नियम उधर कहेंगे ब्राह्मण नहीं अधिक नहीं दो, थोड़े से दो, उसकी चाय थोड़े मिल जाए तो थोड़े खा ले, इतने क्या मन से मिलेगा, तो भी थोड़े खाता है, थोड़े पानी पीता है। पांचाहुति पहले देते हैं, प्राण पांचाहुति, तो इसी प्रकार जो खाते हैं अभी भी पहले सब जो जानते शास्त्रीय पहले इसे करके पांचाहुति पहले देते हैं, थोड़े थोड़े खाते हैं फिर आचमन करेंगे बाद में खाएंगे। तो पहले ये जो प्राणाय स्वाहा इति प्राणस्तृप्यति, प्राण तृप्त हो जाता है। प्राण तृप्त होने से क्या लाभ होता है, प्राणे तृप्यति चक्षुष तृप्यति, चक्षुषी तृप्यन्ति आदित्य तृप्यति, आदित्य तृप्यति द्यौ तृप्यति, देवी तृप्यन्त्यां यत्किंच द्यौ चादित्यश्चाधितिष्ठतस्तत्तृप्यति, तस्यान तृप्तिम तृप्यति प्रजया पशुवीरन्नाद्येन तेजसा ब्रह्म वर्चते नेति। पहले प्राण तृप्त होता है जो आहुति देते हैं, प्राणे तृप्यति चक्षु तृप्यति, वो प्राण तृप्त होने चक्षु, चक्षु आदित्य सब तृप्त होते हैं, चक्षु आदित्य देव सब तृप्त हो जाते हैं, चक्षु तृप्त होने पर आदित्य, आदित्य तृप्त होने पर आदित्य द्यूलोक में तो द्यूलोक तृप्त हो गया, और दिव्य तृप्यत्याम द्यूलोक तृप्त होने पर द्यूलोक में जो रहते जीतने यत किंच द्यौश्च आदित्यश्च अधितिष्ठत, स्वर्ग में द्यूलोक में आदित्य में जितने रहते आदित्य लोक में भी रहते जीव स्वर्ग में ये सब तृप्त तृप्यति तृप्त हो जाते हैं, और वो तृप्त होने के बाद तस्य तृप्तिम अनु तृप्यति, वो द्यूलोक आदित्य में रहने वाले सब तृप्त होने के बाद प्रजा जो यजमान स्वयं तृप्त होता है, तृप्ति मानो सब के तृप्ति होने के बाद वो तृप्त होता है भुक्ता स्वयं स्वयं बीज जो भोजन करने वाला और उसका फल होता है प्रजया पशुभिर अन्नादेन तेजसा ब्रह्मवर्चसेन तृप्त होता है, ये फल प्राप्त करता है। प्रजा पुत्र पुत्रादि पशुधन अन्नाद्य प्राप्त होता है, ब्रह्मवर्च से तेज प्राप्त होता है, शरीर में दीप्ति उज्ज्वल है, प्रागल भी होता है तेज, ब्रह्मवर्च से अलग तेज, अलग ब्रह्मवर्च से अलग तेजसा ब्रह्मवर्चसेन, तेज हो गया शरीर में दीप्ति उज्जवल प्रागल भी होता है, और ब्रह्मवर्च हो गया सदाचार स्वाध्याय के निमित्त तेज है, इसे तृप्त होता है। एक आहुति का कथन आगे और ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मामा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्व निराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ओम शांति 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 शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणा मूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।